ومن صلى على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم. کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے, ہم سب کی غفلت اور جہالت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. بزرگان محترم, اس وقت ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم ہمارے ملک کی آزادی کے دن کو منانے کے لیے اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں. اس وقت میرا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ ملک غلام کیسے بنا اور فریڈم فائٹ آزادی کی لڑائی کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کا تھوڑا سا اتہاس میں آپ کے سامنے عرض کروں. تقریباً 150 سال کی خون اور جگر کی قربانی کا اتہاس میں اس وقت اپنے ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بیان میں آپ کے سامنے ہرگز میں بیان کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی داستان ہے, بہت بڑی برگ بھری داستانیں ہیں اور بے شمار جنگ آزادی کے ان اکابرین کی قربانیاں ہیں. کوشش کروں گا کہ کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کروں. سب سے پہلے 1498 میں 1498 کے اندر پورتگل سے واسکو ڈی گاما کی سرپرستی کے اندر ایک ویپاریوں کا, ملاحوں کا ایک جہاز ہندوستان آیا اور یہ یورپ سے ایشیا میں آنے والا سب سے پہلا یہ پانی کا جہاز تھا. ہندوستان کے اندر اس وقت جو کیرالا کی راجدھانی ہے کالیکٹ, اس کے قریب کے دریا کے کنارے کے اوپر واسکو ڈی گاما نے اور اس کے ساتھیوں نے سب سے پہلے پڑاؤ ڈالا. یہ آئے تھے ویپار کی نیت سے, تجارت کی نیت سے, کاروبار کی نیت سے, لیکن انہوں نے ہندوستان کے اندر آ کر کے صرف ویپار نہیں کیا بلکہ پورتگل سے عیسائیت کو, کرسچینالٹی کو ساتھ میں لے کر کے آئے تھے اور انہوں نے ویپار کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر عیسائی دھرم کو پھیلانا شروع کیا اور بہت سی جگہوں کے اوپر چرچ بنائے. چرچ کے ساتھ ساتھ انہوں نے چینی کی کوٹ, عیسائی کوٹیں انہوں نے چالو کی اور دھیرے دھیرے انہوں نے عیسائی مذہب کو یہاں پر پھیلانا شروع کیا. ایک طرف بزنس بھی کرتے تھے, کاروبار بھی کرتے تھے اور اپنا عیسائی دھرم بھی یہاں پھیلاتے تھے. جو ان کے راستے میں آتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتے تھے, ختم کر دیتے تھے. نہ جانے کتنے ہمارے ہندوستانی بھائی پورتگل سے آئے ہوئے واسکو ڈی گاما کی ٹیم کے لوگوں کے ہاتھ سے مارے گئے. ان کی ایک بہت بڑی داستان ہے, افسوس ہے کہ ہمارا اتہاس اس سے خاموش اور چپ ہے. واسکو ڈی گاما اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. یہ خبر جب یورپ کے دوسرے انگریزوں کو پہنچی کہ ہندوستان تو سونے کی چڑیا ہے, یہ تو کمانے کی جگہ ہے, تو تقریباً 1601 میں 1601 کے اندر, 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی. ابھی بھی آج ہم کو معلوم نہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں قائم ہوئی تھی, اس کا بھی تھوڑا سا اتہاس سن لیجیے. انگلینڈ کے 101 ویپاریوں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کیے اور 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو 101 ویپاریوں نے قائم کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایشین ملکوں کے ساتھ, خصوصاً ہمارے ہندوستان کے ساتھ ویپار اور تجارت کے تعلقات کو بڑھانا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1601 میں قائم ہوئی اور ان کا جہاز ہندوستان آیا اور یہاں آ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے تجارت اور بزنس شروع کیا. یہاں سے سونا چاندی اور ہمارے ہندوستان کی ڈھاکہ کی ململ, اس کو چوری کر کر کے یہاں سے انہوں نے لے جانا شروع کیا. उस जमाने के अंदर ढाका में, ढाका उस वक्त हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, उस वक्त ढाका में ऐसी मलमल बनती थी कि 100 मीटर मलमल का कपड़ा अगर कोई आदमी उसकी घड़ी करे, उसको लपेट ले रहे, तो एक रेती के अंदर भी उसको छुपा सकते थे, इतनी बारीक मलमल होती थी। और रोम और पेरिस और लंदन के अंदर उसको उस जमाने की औरतें, क्रिश्चियन औरतें उसको पहना करती थी। इन्होंने यहाँ आकर की तिजारत शुरू की और तिजारत के साथ साथ धीरे धीरे वो अपना लश्कर भी लाने लगे, अपने कदम यहाँ जमाने शुरू किए। उस जमाने में उन्होंने जो कोठियां बनाई थी अपने लश्करों को छुपाने के लिए, उसमें से कुछ कोठियों की यादगार अगर देखनी हो तो सूरत जब हम जाते हैं तो सूरत तापी नदी के किनारे के ऊपर आज तक उन कोठियों की कुछ यादगार मौजूद है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने कदम यहाँ जमाए और फिर इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के देशी नवाब लोग, राजा महाराजा लोग आपस के अंदर लड़ने झगड़ने के अंदर लगे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि घर के अंदर जो है तो एक आदमी गद्दार निकले तो वही पूरे घर को बर्बाद करने का जरिया बन जाता है। तो घर के हमारे देशी नवाब महाराजा राजा लोग आपस की लड़ाई में थे, उसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और राजा महाराजाओं को आपस में लड़ा लड़ा करके उसने कमजोर किया। आज ये पॉलिसी काश के हमारे हिंदुस्तान के इस वक्त के तमाम नागरिक लोग समझे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आकर के यहाँ के देशवासियों को आपस में लड़ा करके कमजोर करके अपना कब्जा यहाँ जमाया था। आज वही पॉलिसी अंग्रेज लोग इस देश के अंदर अपना रहे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। फिर इन्होंने देखा कि अब यहाँ अपने कदम धीरे धीरे जमा रहे, लश्कर को ला रहे। सबसे पहले 1757 ईस्वी के अंदर प्लासी के मैदान के अंदर इन्होंने एक हिंदुस्तान के उस जमाने के बंगाल के बादशाह नवाब सिराजुद्दौला के साथ इन्होंने बाकायदा प्लासी के मैदान के अंदर जंग की और मीर सादिक जैसे कुछ गद्दार निकल रहा और उनकी गद्दारी की वजह से 1757 की जो जंग थी वो तो प्लासी के मैदान के अंदर नवाब सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफर सादिक और मीर कासिम ऐसे गद्दार निकले कि अल्लाह की तरफ से उनको कुदरती ऐसी सजा हुई कि इस जमाने के अंदर जो कैंसर की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, इससे भी ज्यादा उनको खतरनाक बीमारी लगी। ऐसी ऐसी बीमारी उनको लगी कि बाद के अंदर ब्लैक कोबरा जैसे एकदम जहरीले नाग उनको डसाए जाते थे फिर भी उनकी बीमारी कम नहीं होती थी। ऐसी खतरनाक ब्लैक कोबरा का जो जहर होता है इससे भी ज्यादा खतरनाक जहर उनके बदन के अंदर फैल चुका था। ये अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में सजा दी थी गद्दारी करने की और आखिरत की सजा अपनी जगह के ऊपर है। 1757 ईस्वी के अंदर प्लासी के मैदान के अंदर जब हार गए तो अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर सबसे पहले जो है अपनी हुकूमत जमाई। फिर इस हुकूमत को उन्होंने आगे बढ़ाया यहाँ तक के बाजू में जो मैसूर की हुकूमत थी जहाँ सुल्तान टीपू शहीद वहाँ हुकूमत करते थे। सुल्तान टीपू शहीद के साथ उन्होंने लड़ाई शुरू की 1799 ईस्वी के अंदर, 1799 के अंदर सुरंगापट्टनम का मैदान आज भी मैसूर के बाजू के अंदर मौजूद है। उस सुरंगापट्टनम के मैदान के अंदर अंग्रेजों ने सुल्तान टीपू के साथ जो है जंग शुरू की। जब उस जंग के अंदर सुल्तान टीपू ने मुकाबला किया, ऐसा जबरदस्त मुकाबला किया, उस जमाने के अंदर दुनिया मिसाइल क्या चीज है वो जानती नहीं थी। मेरे पास इतिहास के पूरे सबूत है कि सुल्तान टीपू शहीद ने सबसे पहले सुरंगापट्टनम की लड़ाई के अंदर मिसाइल को इस्तेमाल किया था। उस वक्त अमेरिका और यूरोप दुनिया का कोई देश मिसाइल क्या चीज होती है वो भी जानते नहीं थे। उस वक्त सबसे पहले मिसाइल की थियरी इस्तेमाल करने वाले सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अंग्रेजों के सामने इस 1799 वाली लड़ाई के अंदर जोरदार मुकाबला किया। उस मौके के ऊपर भी कुछ गद्दार लोग सामने आए और उन गद्दारों की वजह से सुल्तान टीपू शहीद को सुरंगापट्टनम के मैदान के अंदर हारना पड़ा, शिकस्त खानी पड़ी। जब हार गए 3 दिन तक उनकी लाश जमीन के ऊपर पड़ी रही, किसी अंग्रेज जनरल मेजर की हिम्मत नहीं हुई कि वो सुल्तान टीपू की लाश के करीब भी जाए। उनको ये खतरा था कि शायद सुल्तान टीपू अभी जिंदा है और हम करीब जाएंगे तो पता नहीं हमारा क्या असर होगा। 3 दिन इस हाल में गुजर गए और अंग्रेजों को यकीन हो गया कि आप सुल्तान टीपू यकीनन शहीद हो चुके हैं। तो जनरल हॉर्स जो अंग्रेजों का चीफ इन कमांडर था उस लड़ाई के अंदर, वो यूनियन जेट को लेकर के सुल्तान टीपू के लाश के करीब पहुंचा और उसने सुल्तान टीपू की सीने के ऊपर बैठ करके यूनियन जेट को जो है उसने लहराया
और उस दिन उसने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुल्तान टीपू कौन आदमी थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए उसी दिन जनरल हॉर्स ने ऐलान कर दिया था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये मैं आपको 1799 की बात कर रहा हूँ, 1799 की आपके सामने बात कर रहा हूँ। सुल्तान टीपू शहीद, मैं आपको बताऊं, आपने सुल्तान टीपू शहीद की सीरियल शायद देखी होगी, उसके अंदर उनको बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है, उनको बिगैर दाढ़ी का चेहरा बताया गया है, ये गलत है। सुल्तान टीपू शहीद अल्लाह के वली थे और कुतुब थे। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने जमाने के कुतुब और अब्दाल के दर्जे के वली थे, वो खुद लिखते हैं मकतूबात के अंदर कि सुल्तान टीपू शहीद अपने जमाने के कुतुबों के भी वली थे, सबसे बड़े वली और अवलिया अल्लाह में से थे सुल्तान टीपू शहीद। बल्कि इतना ही नहीं, सुल्तान टीपू शहीद वो इंसान थे, मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि बालिग होने के बाद कभी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई थी, वो सुल्तान टीपू शहीद थे, वो साहिब तरतीब आदमी थे, जिंदगी में एक नमाज भी उनकी कज़ा नहीं हुई थी, तहज्जुद गुजार आदमी थे। 1799 के अंदर सुल्तान टीपू की शहादत हुई, उनका वो जुमला, उनका वो सेंटेंस जो इतिहास के अंदर आज तक मौजूद है कि गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी के मुकाबले के अंदर शेर की तरह एक घड़ी की जिंदगी ज्यादा अच्छी है, ये कहते हुए वो सुरंगापट्टनम के मैदान में शहीद हुए। सुल्तान टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों को हिम्मत बढ़ी और वो धीरे 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 आगे बढ़े और सबसे पहले 1800 ईस्वी के अंदर लॉर्ड लिक के कमांडरी के अंदर अंग्रेजों की फौज बंगाल और मैसूर से आगे बढ़ी दिल्ली की तरफ कि चलो अब दिल्ली को हम लोग कब्जा करते हैं, और धीरे धीरे वो लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। उस वक्त दिल्ली के अंदर मुगल सल्तनत अपनी कमजोरी की हालत के अंदर थी और मुगल बादशाह धीरे धीरे कमजोर होते हुए चले आ रहे थे। 1803 ईस्वी के अंदर 1803 के अंदर 1803 ईस्वी के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों का लश्कर दिल्ली पहुंचा, और लश्कर दिल्ली पहुंचा तो उस वक्त मुगल बादशाह शाह आलम उस वक्त मौजूद थे, ये बहादुर शाह जफर से भी पहले शाह आलम उस वक्त मौजूद थे। शाह आलम को उन्होंने जबरदस्ती एक आपस के अंदर सुलहनामा लिखवाया। उस सुलहनामे के 3 जुमले इतिहास में आपने पढ़े होंगे कि खल्क खुदा की यानी पब्लिक अल्लाह की, मुल्क बादशाह का, और ऑर्डर एंड लॉ वो कंपनी बहादुर का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये उस वक्त उन्होंने नारा लगाया था। जिस दिन वो नारा उन्होंने लगवाया शाह आलम के पास, उस दिन यकीन हो गया था कि अब जो है लाल किले के अंदर मुगलों की हुकूमत खाली नाम की है और अब हकीकत के अंदर हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की हो चुकी है। ये 1803 का 1803 की बात मैं आपको बतला रहा हूँ, जब शाह आलम के पास जो है उन्होंने सुलहनामा लिखवाया था। उस वक्त दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जो हदीस शरीफ बैठ के पढ़ाया करते थे। जिस मस्जिद में बैठ के हदीस पढ़ाते थे आज तक उनकी वो मस्जिद दिल्ली के अंदर मौजूद है। उस मस्जिद में वो बैठने वाले, चटाई पर बैठने वाले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आज के इस मौके के ऊपर मैं दुआ करता हूँ हजरत वाला की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। ये वो शख्स है कि जिस शख्स ने सबसे पहले आजादी की लड़ाई के लिए आवाज उठाई, इनसे पहले आजादी के लिए आवाज उठाने वाला कोई शख्स नहीं है। हमारा चैलेंज है कोई भी आदमी इतिहास की रोशनी के अंदर हमारे सामने प्रूफ करे कि 1808 से पहले, हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब के ऐलान से पहले किसी ने भी आजादी के लिए आवाज उठाई नहीं थी। 1808 ईस्वी के अंदर 1808 के अंदर सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, जो फतावा अजीजिया के पेज नंबर 17 के ऊपर छपा हुआ मौजूद है। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान वालों, तुम कौन सी गफलत की नींद में सोए हुए हो, ये तुम्हारा मुल्क अंग्रेजों का हो चुका है, उसको अंग्रेजों से आजाद कराना हम सबका कौमी फरीजा है। हम सबका जो है अपनी मातृभूमि के साथ प्रेम का तकाजा है, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क को आजाद कराने के पीछे लग जाए। ये फतवा 1808 1808 के अंदर सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। इसीलिए आज की इस मजलिस के अंदर जंगे आजादी के फाउंडर, आजादी की लड़ाई की इब्तिदा करने वाले अगर किसी शख्स को हम तय कर सकते हैं तो वो हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। इनसे पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, ये सबसे पहले इंसान गुजरे हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक रिश्तेदार हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तो उनसे ये कहा कि नवाब होलकर और उनकी फौज के अंदर जाकर के मिलो और मिल करके अंग्रेजों के सामने मुकाबला करो। चुनांचे होलकर जो राजा थे उनकी फौज के अंदर और अमीर खान जो उनके मुंह बोले भाई थे उन दोनों की फौज के अंदर शरीक होने के लिए शाह अब्दुल अजीज साहब ने हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भेजा कि जाओ और नवाब होलकर के साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करो। उन्होंने 7 बरस तक मुसलसल होलकर के साथ मिल करके अंग्रेजों के सामने लड़ाई की। 7 बरस की लड़ाई के बाद जब नवाब होलकर ने अंग्रेजों के साथ सुलह की तैयारी की तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मेरी जमीर मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि हम अंग्रेजों के साथ सुलह कर ले। इसलिए सैयद अहमद शहीद ने होलकर का लश्कर छोड़ करके दोबारा दिल्ली आ गए और हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब से मुलाकात की। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने फरमाया कि जब होलकर बादशाह सुलह कर रहे तो अब तुम अपनी अलग फौज बनाओ और अलग फौज बनाकर के अंग्रेजों के सामने लड़ाई की तैयारी करो। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 1818 में 1818 के अंदर 1818 के अंदर बाकायदा उन्होंने फौज तैयार की और पूरे मुल्क का देश के खोने खोने का उन्होंने सफर किया और पूरे देश के अंदर लोगों को तैयार किया कि हमें अंग्रेजों के सामने लड़ाई करनी है और अंग्रेजों के सामने हमें उठना है और बाकायदा उन्होंने लड़ाइयां शुरू की और उनकी लड़ाई मुसलसल जारी रही 1824 तक 1824 तक हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सबसे पहला फतवा दिया था वो पैसे भी देते रहे, हथियार भी बेचते रहे और साथ साथ में खाना पीना भी बेचते रहे। बराबर 1824 तक हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब इसके जो है सर सेनापति थे। 1824 के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब का इंतकाल हो गया तो फिर हजरत शाह मोहम्मद इसहाक साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कमान अपने हाथ के अंदर संभाली। यहाँ तक के 1831 के अंदर 1831 के अंदर 1831 के अंदर हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट जो पंजाब के अंदर एक जगह है उस मैदान के अंदर अपने 200 साथियों के साथ शहीद हुए और उन 200 साथियों के साथ उनकी कब्र बालाकोट के मैदान के अंदर आज तक मौजूद है और वहां उन्होंने शहादत का जाम किया और 200 साथियों के साथ उनकी कब्र बालाकोट के मैदान के अंदर बनी। ये बाकायदा 200 वो साथी थे जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के खातिर सबसे पहले अपनी जान की कुर्बानी दी। ये हजरत सैयद अहमद शहीद हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने 1831 के अंदर 1831 के अंदर बालाकोट के मैदान के अंदर इस मुल्क की आजादी के खातिर इन्होंने कुर्बानी दी है। उसके बाद 1831 के बाद उलमाए सादिकपुर जो पटना बिहार के अंदर जो वहां की राजधानी है पटना उसके करीब में सादिकपुर है वहां के उलमा ने बाकायदे एक लश्कर बनाया और उन्होंने 1831 से 1846 1846 तक तकरीबन 80,000 आदमियों की फौज के साथ अंग्रेजों के साथ बराबर मुकाबला चालू रखा। ये 1831 से लेकर 1846 तक की दास्तान है कि जिसमें उलमाए सादिकपुर और मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह उनके साथियों ने 80,000 के लश्कर के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया है। उसके बाद हुआ ऐसा कि अंग्रेजों की फौज धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर बराबर अपना कब्जा जमा रही थी और पूरे मुल्क के अंदर भी उनका कब्जा दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। इसी दरमियान अंग्रेजों की तरफ से एक कमबख्ती सामने आई। वो कमबख्ती ये सामने आई कि इन्होंने 4 खतरनाक काम किए। अंग्रेजों ने पहला काम ये किया कि उनकी फौज के अंदर जो मिलिट्री के रास्ते रोटी पकती थी उस रोटी का जो आटा होता है उस लोट के अंदर उन्होंने
सूअर और गाय की हड्डी का पाउडर है। सूअर की हड्डी का पाउडर और गाय की हड्डी का पाउडर फौजियों के लिए जो रोटी पकती थी उसके अंदर आटे में उन्होंने मिलावट चालू की। दूसरा काम अंग्रेजों ने यह किया कि जो घी आता था उस घी के अंदर उन्होंने सूअर की हराम चर्बी को उसके अंदर मिलाना चालू किया। और तीसरा काम यह किया कि कुओं के अंदर गाय और सूअर का गोश्त डाला और कुओं का पानी नापाक करके फौजियों को और मिलिट्री को कहा कि तुमको इसी कुएं के अंदर से पानी पीना है। और चौथा काम यह किया कि जो कारतूस उन्होंने बनवाई उसके ऊपर उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी लगाई और कंपलसरी ये करार दिया कि कोई भी सोल्जर कोई भी सिपाही अपनी कारतूस को खोले तो अपने मुंह से खोले ताकि हिंदुओं की लागनी इस तरीके से दुभाएगी कि वो गाय की चर्बी वाली कारतूस को खोले और मुसलमान फौजियों की लागनी इस तरीके से दुभाएगी कि वो सूअर की चर्बी वाली कारतूसों को खोले। ये चार किस्म के काम उस वक्त अंग्रेजों ने किए जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर गजब और गुस्से की लहर फैल गई और बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। और उसी के नतीजे के अंदर 1857 के अंदर 1857 के अंदर जंगे गदर हुई जिसको हम विप्लव कहते हैं, अंग्रेज उसको गदर कहते हैं, बगावत कहते हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे हिंदुस्तान वासियों की तरफ से बहुत बड़ी सशस्त्र जंग थी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ उठाई गई थी। 1857 के अप्रैल के महीने के अंदर मंगल पांडे को फांसी दी गई जिनके नाम के ऊपर अब फिल्म भी बन चुकी है उनकी हिस्ट्री के ऊपर। अगर जो उसके अंदर जो मैंने स्टोरी पढ़ी है पेपर के अंदर उससे ये मालूम होता है कि सही इतिहास उसके अंदर रजू नहीं किया गया है, उसके अंदर भी इतिहास को रजू करने के अंदर बहुत गड़बड़ी की गई है। 10 मई 1857 के अंदर जो है ये विप्लव शुरू हुआ और अफसोस के विप्लव करने वाले हमारे सिपाहियों के पास कोई अच्छा सेनापति नहीं था जो इनको अच्छी तरीके से संभाल सके, इसलिए उस जमाने के अंदर तकरीबन 20 सितंबर 1857 के अंदर ये विप्लव हमारा नाकाम हुआ और लाल किले के ऊपर से हमारा तिरंगा झंडा उतार करके बाकायदा वहाँ यूनियन जैक यानी इंग्लैंड का झंडा लहरा दिया गया। ये तारीख थी 20 सितंबर 1857 की कि जिस दिन तिरंगा झंडा उतार करके वहाँ बाकायदा तौर पर यूनियन जैक को लहरा दिया गया, बहादुर शाह को जफर को पकड़ा गया और पकड़ करके उनको कैद किया गया और उनके जो शहजादे मिले उन शहजादों को यानी प्रिंस को बादशाह के बेटों को पकड़ के कत्ल किया गया और कत्ल करके सिर्फ उनके सर जो खून के अंदर भरे हुए थे एक खुंचे के अंदर रखे गए और रख करके उसके ऊपर बेहतरीन कपड़ा ओढ़ाया गया और सुबह सुबह नाश्ते के अंदर जब नाश्ते का खुंचा बहादुर शाह जफर के पास अंग्रेज सिपाही लेकर के पहुंचे तो नाश्ते का खुंचा बाद में गया, पहले वो खुंचा गया जिसके अंदर बहादुर शाह जफर के बेटों की खोपड़ियां रखी हुई थी खून से भरी हुई और उसके ऊपर शानदार कपड़ा ओढ़ाया हुआ था। बहादुर शाह जफर ये समझे कि अंदर नाश्ता रखा होगा, जब कपड़ा उठाया तो देखा कि अपने 3 नौजवान लड़कों के सर रखे हुए हैं खून से भरे हुए, तो बहादुर शाह जफर की आंख में आंसू नहीं आए बल्कि उन्होंने यूं कहा कि ये तैमूरी शहजादों की शान है, ये मुगल बेटों की शान है कि वो अपने बड़ों के साथ लाल खोपड़ी के साथ आते हैं, गुलाम बनकर के वो नहीं आते, वो मुल्क के लिए जान दे सकते हैं लेकिन जो है अंग्रेजों के गुलाम नहीं बन सकते। बहुत अच्छा हुआ ये शहीद हो गए लेकिन गुलाम नहीं बने, खुशी के मारे बहादुर शाह जफर ने जो है नारा लगाया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके फिर रंगून की जेल में ले गए और उसी जमाने का उनका वो शेर मशहूर है, कितना बदनसीब है तू ए जफर, कितना बदनसीब है तू ए जफर, दो गज जमीन मिल सकी कोए यार में। बहादुर शाह जफर को वहाँ रंगून की जेल में ले गए और जिंदगी के आखिरी दिन बहादुर शाह जफर ने जो है वहीं पर गुजारे, वहीं पर इंतकाल हुआ और बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल के अंदर दफन किया गया और आज तक रंगून की जेल के अंदर उनकी कब्र मौजूद है। जिस वक्त 1830 के बाद 1930 के बाद एक मर्तबा हमारे हिंदुस्तान के आजादी के बाद लीडरों को जिसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे उनको भी रंगून की जेल में अंग्रेजों ने बंद किया था। जवाहरलाल जी ने रंगून की जेल के अंदर देखा कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह उनकी खबर तो यहाँ है रंगून में, तो पंडित जी ने उसी वक्त के ऊपर दिल में नियत की थी और बहादुर शाह जफर की कब्र पर खड़े होकर कहा था, ए बादशाह सलामत, जिस दिन देश आजाद होगा तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि तुम्हारी कब्र को रंगून की जेल से निकाल करके मैं दिल्ली के लाल किले के अंदर लाकर के तुमको मैं दफन करूंगा। ये उन्होंने वहां प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने वहां अहद किया था। जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, पंडित जी देश के सबसे पहले वड़ा प्रधान बन गए, तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मैंने जेल में बैठे बैठे ये प्रतिज्ञा ली थी कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लाश को मैं रंगून की जेल से निकाल करके लाल किले में लाकर के दफन करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट ने एक आवाज पर पंडित जी की आवाज में लब्बैक कही। फिर जब ये मसला आया, मौलाना आजाद उस वक्त जो है शिक्षण मंत्री थे कैबिनेट के, और मुजाहिदे मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से हारी रहमतुल्लाह अलैह तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप पार्लियामेंट से ये कानून से पास करवा रहे कि बहादुर शाह जफर की लाश को लाना है, लेकिन आप जरा मजहबी एतबार से फतवा भी मालूम कर लीजिए कि इस्लाम के अंदर ये जायज है कि नहीं है। चुनांचे पंडित जी ने खुद उस जमाने के अंदर दारुल देवबंद को और मदरसा मजाहिदुल सहारनपुर किताबों के अंदर मौजूद है। पत्र में ये लिखा गया कि जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है उसी जगह के ऊपर उनकी कब्र को रहने दिया जाए, इस तरह कब्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सही और जायज नहीं है। पंडित जी ने इस फतवे का एहतराम किया और उस फैसले को उन्होंने वापस लिया कि वहीं रंगून के अंदर जो है बहादुर शाह जफर की जो है लाश रहेगी और वहीं पर उनको रखा जाएगा। 1857 के अंदर जब विप्लव नाकाम हुआ है तो अंग्रेजों ने वो जुल्म किए हैं, वो जुल्म किए हैं कि मैं उसको आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे जुल्म अंग्रेजों ने किए हैं, चुनांचे पूरे दिल्ली के अंदर मेरठ से लेकर दिल्ली तक तमाम रास्तों के ऊपर जितने झाड़ थे हर झाड़ के ऊपर फांसी के माचड़े लटकाए और उस फांसी के माचड़े के ऊपर और दिल्ली के हर चौराहे के ऊपर, दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर सब जगह फांसी के माचड़े लटकाए गए और 1857 के विप्लव के जितने भी मुजाहिदीन थे हर एक को पकड़ पकड़ के लाते थे, हाथी के ऊपर बिठाते थे और बिठा करके उनके गले में फंदा डालते थे और हाथी को दौड़ा देते थे। बेचारा वो सुरवीर ऊपर लटक करके तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता था और वहीं पर वो कुर्बान हो जाता था। मैं नहीं कहता हूं, एक अंग्रेज राइटर के हवाले से कहता हूं, उस लेक्चर का नाम है एडवर्ड टेंशन, उसने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि हम अंग्रेजों ने उस वक्त के ऊपर दिल्ली के अंदर और मेरठ के अंदर जो मजालिम किए हैं उसकी दास्तान मैं नहीं बयान कर सकता। 27,000 मुसलमान आलिमों को और मुफ्तियों को हमने फांसी के ऊपर लटकाया है, ये एडवर्ड टेंशन खुद अपने हाथ से लिखता है। और आगे चलकर के मैं आपको बतलाऊं, मेवाराम गुप्ता एक राइटर है, उन्होंने 1857 के विप्लव का इतिहास लिखा है। मेवाराम गुप्ता खुद अपने हाथ से लिखते हैं, मैं इतिहास के एक एक सबूत आपको दे रहा हूँ कि 5,00,000 मुसलमानों को दिल्ली के अंदर फांसी की सजा दी गई थी। ये खुद गुप्ता जी ने लिखा है कि 5,00,000 मुसलमानों को 1857 के अंदर दिल्ली के अंदर फांसी दी गई थी। और मैं आपको क्या क्या दास्तानें सुनाऊं, चुनांचे लाशों को लटका करके रखा जाता था, उसको नीचे भी नहीं उतारा जाता था और बहुत से मुसलमानों को पकड़ के उनको बांध देते थे, बांध करके उनका मरे भी नहीं और तड़प तड़प करके वो अपना वक्त जो है गुजारे, दो दो दिन, चार चार दिन, छह छह दिन उसका वक्त गुजर जाता था। एक इंग्लिश लेडी लिखती है, आप लोग लंदन जाते हैं तो सिर्फ जो है लंदन ब्रिज मत देखिए, वहां पर इंडिया लाइब्रेरी भी मौजूद है। इंडिया लाइब्रेरी के अंदर अंग्रेजों ने जितने जुल्म किए उसके सारे दस्तावेज वहां मौजूद है। उन दस्तावेजों को जाकर के आप पढ़िए इंडिया लाइब्रेरी के अंदर, लंदन सिटी के अंदर। एक अंग्रेज लेडी ने लिखा है, उस लेडी ने ये लिखा है कि मैं दिल्ली के अंदर शाम को अपने हस्बैंड के साथ कभी कभी घूमने के लिए निकलती थी, जब फिरने के लिए थी मैं अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर के जाती थी और रिवॉल्वर इसलिए लेकर के जाती थी ताकि मुसलमान आलिमों के ऊपर मैं रहम करूं, उनके ऊपर मैं मेहरबानी करूं। ये वो लेडी लिखती है। फिर वो लेडी ये लिखती है कि भविष्य के अंदर मेरा इतिहास पढ़ने वालों को सवाल पैदा होगा कि रिवॉल्वर से रहम कैसे होता है, रिवॉल्वर से मेहरबानी कैसे होती है। इसलिए मैं खुद इसका जवाब लिख देती हूँ कि मैं इसलिए रिवॉल्वर लेकर के जाती थी कि दिल्ली के लाल किले के सामने और इंडिया गेट के सामने बेशुमार मुसलमान आलिमों को پکڑ کر کے باندھا ہوا ہوتا, ان کے پیٹ کے اندر پیپل ڈالا ہوا ہوتا, ان کے اوپر زخم ڈالے ہوتے, وہ بیچارے تڑپتے ہوئے ہوتے تھے اور دو دو چار چار دن سے تڑپتے ہوتے تھے. میں ریولور اس لیے لے کر کے جاتی تھی تاکہ گولی مار کر کے بیچارے کو ختم کر دوں, تاکہ وہ تڑپنے کی تکلیف سے اس کو چھٹکارا مل جائے. اس طریقے سے جو ہے ہم انگریزوں نے ظلم کیا ہے. یہ انگریز لائبریری میں لکھا ہے اور انڈیا لائبریری کے لندن کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے, آپ اس کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. بہت سے علماء کرام کو پکڑ کر کے باندھا جاتا تھا اور ان کو توپ کے ساتھ باندھا جاتا تھا اور توپ کے گولے کے ساتھ ان کو اڑایا جاتا تھا, بیچاروں کی ایک ایک بوٹیاں اڑ کر کے جو ہے ختم ہو جاتی تھی. ایسے 500,000 آدمیوں کو 1857 کے بسلو کے نتیجے کے اندر 500,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا, قربانی دی گئی. پورے ملک کے اندر سناٹا چھا گیا اور پورا ملک خاموش ہو گیا. 10 برس تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ انگریزوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. آج جس ڈارلین دیوبند کو بدنام کیا جاتا ہے, دیوبند کے جس مدرسے کو بدنام کیا جاتا ہے, کاش کہ میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ اس کی ہسٹری میں آپ کو سامنے ذکر کرتا. 1857 کے اس وپلو کی ناکامی کے بعد جب پورے دیش کے لوگ مایوس ہو چکے تھے, کسی میں ہمت نہیں تھی کہ انگریزوں کے سامنے نظر اٹھا کر کے بھی دیکھے. 10 برس گزرنے کے بعد 1867 کے اندر دیوبند کی سرزمین کے اوپر ہمارے سارے بزرگان دین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے مل جل کر کے دیوبند کے مدرسے کی بنیاد ڈالی. اور دیوبند کے مدرسے کی بنیاد اس لیے ڈالی تھی, آج بھی دیوبند کے بندھارن کے اندر, وہاں کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس مدرسے کی استھاپنا اس لیے ہو رہی ہے تاکہ اس ملک کو انگریزوں کے ہاتھ سے چھڑایا جائے, انگریزوں کے ہاتھ سے آزاد کرایا جائے, اور انگریزوں کے ظلم سے اس ملک کو آزاد کرانا ہے. اس کے لیے ہم نے اس مدرسے کی بنیاد اور پایا رکھا ہے. تو دارالعلوم دیوبند, اس کا فاؤنڈیشن, اس کی استھاپنا انگریزوں کے ظلم سے اس ملک کو آزاد کرانے کے واسطے رکھی گئی تھی. بزرگان محترم, میں کون کون سی داستانوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں, بہت جو ہے مجھے وقت دیا گیا تھا, اس سے بہت آگے میں نے اپنی بات کو بڑھا دیا ہے. میں آپ کو اور کیا ذکر کروں, 1867 میں دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے فرسٹ اسٹوڈنٹ جن کا نام مولانا محمود حسن تھا, بعد میں چل کر کے ان کو لقب شیخ الہند کا ملا. انہوں نے مالٹا کی کالی کوٹھڑی کے اندر جیل کی سزا بھگتی. انگریزوں کے خلاف انہوں نے ایک چڑوڑ چلائی تھی, اس چڑوڑ کے نتیجے کے اندر ان کو جیل کی سزا ہوئی. اور 1920 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, مالٹا یہ یوروپ میں ایک ٹاپو ہے اور انگلینڈ کے قریب کے اندر ہے, وہاں 3 برس 1 مہینہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیل کے اندر بند رکھا گیا تھا. بہت گورے آدمی تھے. انتقال جب ہوا تو انتقال کے وقت غسل کے لیے جب ان کے کپڑے اتارے تو غسل دینے والے رو پڑے کہ حضرت اتنے گورے اور پیٹھ پوری کالی اور لال تھی, بہت کالی اور لال تھی, کہ حضرت کی پیٹھ کالی اور لال کیوں ہے پوچھو کسی کو. تو ان کے جیل کے ساتھی مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور پوچھا کہ حضرت کی پیٹھ کالی اور لال کیوں ہے. تو حضرت مدنی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے, ایک راز تھا, ایک بھید تھا, ایک سیکرٹ تھا, آج مجھے کھولنا پڑ رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ مالٹا کے 3 سال کی جیل کے اندر انگریز روزانہ صبح کے اندر 3 بجے حضرت شیخ الہند کو جیل میں سے نکالتے تھے, برف کے اوپر سلاتے تھے اور برف پر الٹا سلا کر کے حضرت کی پیٹھ کے اوپر سلیوں کو لال کر کے اور لوکھن کو گرم کر کے حضرت کی پیٹھ کو اتنا مارتے تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت کی پیٹھ لال اور کالی پڑ گئی تھی. اور اسی حال کے اندر ان کا پورا بدن نحیف اور کمزور ہو گیا تھا. جب انتقال کا وقت قریب آیا, لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ دیوبند یونیورسٹی کے فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی کے فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو ایک جگہ بتلاؤ جہاں آپ کی عالیشان ہم قبر بنائے. حضرت نے فرمایا کہ تم میری عالیشان قبر بنانے کی بات کرتے ہو اور میری قبر پر گنبد بنانے کی بات کرتے ہو, مجھے پوچھو میں کیا چاہتا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انگریزوں کے سامنے اسی کمزوری کے ساتھ میدان میں اتروں اور انگریزوں کے سامنے لڑتے لڑتے میں میدان کے اندر شہید ہو جاؤں, یہاں تک کہ انگریز میری لاش کے اوپر اپنا غصہ نکالے और मेरी लाश को अपनी तलवार के जरिए से चुरा चुरा कर डाले, टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरी लाश को कुत्ते आकर के खा जावे और मुझे दफन करने की जरूरत न पड़े, मुझे कफन पहनाने की जरूरत न पड़े और कल कयामत के मैदान के अंदर जब सब लोग अपनी कब्र से निकल के आएंगे तो मेरा बदन कुत्तों के बदन से निकल करके आएगा और मैं कहूंगा मैदान कयामत में अल्लाह से कि हिंदुस्तान की आजादी के रास्ते मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की थी। ये हमारे अकाबरीन और बुजुर्गानुद्दीन के जज्बात थे। मैं सैकड़ों वाकयात इस वक्त छोड़ रहा हूँ और सारी की सारी चीजों को हस्त कर रहा हूँ। इस वक्त मैं फिर से एक बार याद करता हूँ सैयद शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को। मौलाना मदनी कौन थे टुक में उनका तारीफ में करवा दूं। आजाद भारत के अंदर जो उस जमाने का सबसे बड़ा हमारे देश का अवार्ड था पद्मश्री, जैसे आज भारत रत्न है, उस वक्त सबसे बड़ा हमारा भारत देश का अवार्ड था पद्मश्री। तो उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने ठहराव पास किया कि देश का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री अगर किसी इंसान को दिया जाए, सबसे पहला अवार्ड अगर किसी को दिया जाए तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को दिया जाए। सब ने एक जबान ठहराव पास किया था। मौलाना मदनी को जब पद्मश्री अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो फरमा दिया हमने देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी कोई अवार्ड लेने के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमें अवार्ड की जरूरत नहीं है, हमने तो देश प्रेम के अंदर लड़ाई लड़ी थी। ये कहकर के हजरत ने उस अवार्ड को भी कबूल नहीं फरमाया और उस अवार्ड को भी हजरत ने रद्द फरमा दिया। ये थे हमारे वो अकाबरीन जिन्होंने अल्लाह के वास्ते और देश प्रेम के खातिर अपनी कुर्बानियां दी। जब हम बाइबली में बैठे हैं तो मैं जरा अपनी 1928 की जो चरवर हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाई थी उसका भी कुछ थोड़ा सा जिक्र कर दो। 1928 के अंदर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे बारडोली से एक चरवर चलाई खेडूतों को साथ लेकर के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस चरवर के अंदर अभी कोई जान नहीं थी। लोग उनके साथ मिलते थे अलग होते थे, मिलते थे अलग होते थे। इस वक्त मैं बड़ी खुशी से ये बात आपको कह सकता हूँ और बहुत इज्जत और बहुत प्रूफ के साथ ये बात कह सकता हूँ, मेरा ताल्लुक उस यूनिवर्सिटी के साथ है, उस मदरसे के साथ है और जिस मदरसे के इस वक्त प्रिंसिपल आज की हमारी इस मजलिस के अंदर मौजूद है। कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त चरवर चलाई तो वल्लभ भाई पटेल ने एक फतवा पूछा, हमारे बारडोली के खेडूतों ने फतवा पूछा बाभेल मदरसे से कि हमने जो ये अंग्रेजों के विरुद्ध में चरवर चलाई है, तो उस वक्त हमारे बाभेल मदरसे के मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा एक फतवा लिखा और वल्लभ भाई पटेल की चरवर को सपोर्ट किया। जब वो फतवा बाभेल के दारुल इफ्ता से आया तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल की चरवर के अंदर ताकत आई और लोग उस चरवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा शामिल हुए। दांडी यात्रा के अंदर भी गांधी जी को सपोर्ट करने वाला हमारा मदरसा था। मैं आज इस इज्जत के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात की जमीन के ऊपर धार्मिक संस्थाओं ने अगर किसी ने आजादी की चरवर को सपोर्ट किया है तो उसके अंदर हमारा नाम अकेला मिलता है, कोई उसके अंदर हमारा शरीक नहीं है। बहरहाल इस मुल्क की आजादी के खातिर हमने बेशुमार कुर्बानियां दी है और अफसोस इस बात का है कि 1939 के अंदर सबसे पहले पार्टीशन और भागले की बात आई। इस वक्त मैं आपको दर्द दिल से कहता हूँ भागले हमने मांगे नहीं थे, पाकिस्तान हमने मांगा नहीं था, पाकिस्तान के भागले को हमने सपोर्ट नहीं किया था और न पाकिस्तान की मांगनी हमने रखी थी। बहुत साफ साफ कहता हूँ अफसोस कि मैं आपको एक सबूत पेश करता कि आज जिनको हम आजादी के बड़े बड़े लड़ोइया लोग कहते हैं मैं आपको कहूंगा तो आप शर्म के मारे सर झुका लेंगे, वही भागला करवाने के सबसे बड़े हामी थे और उन्हीं लोगों ने भागले करवाए थे। हम मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा नहीं था और न उसके चाहने वाले थे। हमारे बदन के अंदर तो वो खून दौड़ रहा है कि हम तो भागले के विरोधी लोग थे कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए और भारत को टुकड़े ही नहीं होने चाहिए और एक अखंड भारत रहना चाहिए, हम तो ये चाहते थे। पर अल्लाह करे वो दिन आ जाए जब वो जर्मनी एक हो सकते हैं तो तीन हिंदुस्तान के टुकड़े एक हो सकते हैं, हम तो इम्पॉसिबल नहीं है और अखंड भारत दोबारा बन सकता है। बहरहाल इस मुल्क की आजादी की कुर्बानियों के अंदर हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के इस मुबारक मौके पर हम तमाम मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह उन सब की खबरों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 1947 में आजादी के बाद जब गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर सबसे पहली तकरीर की, अगर ऑल इंडिया रेडियो वो प्रूफ आपको देवे तो इसमें वो जुमले मौजूद हैं कि आजादी, लोग मुझे कह रहे हैं कि मुसलमानों को कहो पाकिस्तान चले जाओ,
गांधी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों को कैसे कहूं कि पाकिस्तान चले जाओ। ये गांधी जी के लफ्ज में आपको बतला रहा हूं कि लोग मुझे दबाव कर रहे हैं कि आप मुसलमानों को कहो कि पाकिस्तान चले जाओ। गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर तकरीर करते हुए पूरे देश को कहा था कि मैं कैसे मुसलमानों को कहूं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, इसलिए कि पूरा देश सोया हुआ था और सबसे पहले मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने सबको जगाया आजादी की लड़ाई के वास्ते। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कुर्बानी दी, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी ने कुर्बानी दी। मैं किस जबान से इनको कहूं कि तुम देश छोड़ के चले जाओ। इस देश की आजादी के लिए इन्होंने 10-10 सालों की, 15-15 सालों की, 20-20 सालों की जेल की सजाएं भुगती है। मैं उनको हरगिज़ नहीं कह सकता कि तुम देश छोड़ करके चले जाओ। मेरे बुजुर्गों, ये सब हमारी आजादी की तारीख है, जरूरत है कि हम उसको पढ़े। आज हम स्टडी नहीं करते, हम सब कुछ पढ़ते हैं, अपना इतिहास नहीं पढ़ते। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है उसको सफाए हस्ती से मिटाना आसान हो जाता है, और जो कौम अपने इतिहास को पढ़ती है दुनिया की कोई ताकत उसको दुनिया से खत्म नहीं कर सकती। जरूरत है कि हमारी नस्ल, हमारी पीढ़ी हमारे इतिहास को जाने। मैं अपने हाईस्कूल परिवार के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा जिससे मुझे कुछ मौका मिला कि आजादी के अंदर जो है मैं हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को पेश कर सकूं। क्योंकि हमारी पीढ़ी तो यही समझती है कि जो है फला फला लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने देश को आजाद करवाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने वाले हम लोग हैं। आए कोई मेरे पास इतिहास के सबूत लेकर के कि जब गांधी जी अफ्रीका से आए तो उनको महात्मा का लकब तो मौलाना अब्दुल हई बारी फिरंगी महल्ली लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। ये महात्मा का शब्द लगाने वाले मौलाना अब्दुल हई बारी है, हमने उनको महात्मा बनाया है। और गांधी जी को कोई जानता नहीं था, सबसे पहले जमीयत उलमाए हिंद ने अपने फंड के जरिए से गांधी जी को पूरे देश में सफर करवाया और लोगों को कहा कि ये भी एक लीडर है और उनकी लीडरी भी तस्लीम करो, हम ही उनको आगे लाने वाले थे। आज जो गांधी कैप कहलाती है, जो दो कलनी टोपी जो खादी की मिलती है वो गांधी कैप होती है। आपने कभी देखा कि गांधी जी ने जिंदगी में टोपी पहनी है? कभी आपने देखा कोई फोटो है आपके पास एक भी कि जिसके अंदर गांधी जी के सर के ऊपर टोपी है? फिर ये गांधी कैप कैसे बन गई इसका इतिहास भी मैं आपको बतला दूं। ये हकीम अजमल खां मरहूम की टोपी है और हकीम अजमल खां के साथ एक मरतबा एक आजादी के जलसे में हकीम अजमल खान ने एक मिनट के लिए गांधी जी के सर पर वो टोपी रखी। उस दिन से उस टोपी का नाम गांधी टोपी बना, वरना ये हकीकत में हकीम अजमल खान मरहूम की टोपी है। खैर, ऐसी ऐसी तो इतिहास की बहुत सारी दास्तानें हैं। काश को कोई मौका होता मैं आपको सारा तफसील से सुनाता। अल्लाह ताला जो है हम सबको हमारे बुजुर्गों के साथ सही रास्ता अता फरमाए। मुल्क से हमें मोहब्बत है, देश से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए और देश प्रेम जो है हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि मुश्किल वतन मुश्किल ईमान, देश प्रेम ईमान का आधा हिस्सा है। जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी देश का गद्दार हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान देश से गद्दारी करते हैं उसका ईमान भी कमजोर है और उसके इस्लाम के अंदर भी गद्दारी है। पक्का मुसलमान कभी देश का गद्दार हो नहीं सकता। देश कैसे तरक्की करे इसकी हमें फिक्र करने की जरूरत है। 1947 में देश को हमने आजाद तो करा लिया, लेकिन आज 2005 के अंदर देश दोबारा मल्टीनेशनल कंपनियों की गुलामी के अंदर जा रहा है। बहुत अफसोस से मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए हमें दोबारा देश की आजादी के लिए शायद लड़ाई लड़नी पड़े, ऐसे हालात आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उन तमाम बुजुर्गों की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। वाखिर दावाना
Gracias.